आहान के सवाल पर नानी माँ खुद को रोक नहीं पाईं। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, वो अजनबी नहीं है। जैसे ही नानी माँ के मुंह से टूटी फूटी जुबान में ये शब्द निकले, सबके चेहरे हैरानी से भर गए। हॉल में सन्नाटा छा गया। वहीं दादाजी आगे आए और हैरानी से बोले, ये कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? अगर वो अजनबी नहीं है तो फिर कौन है, और आप उसे लेकर इतना परेशान क्यों हैं? नानी माँ जल्दी से दादाजी की ओर मुड़ी और कांपती आवाज में बोली, भाई साहब, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। भाई साहब, नहीं है वो लड़की अजनबी, ये कहते हुए नानी माँ रोती थीं। नानी माँ की हालत ऐसी थी कि वे ठीक से बोल भी नहीं पा रही थीं, बार बार उनकी आवाज़ रुंध जा रही थी। तभी आस्था ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला और कहा, आप सबको हम बताते हैं, प्लीज़ आप सब शांत हो जाइए। तभी अविनाश ने हैरानी से एंजल को देखकर कहा, एंजल, क्या तुम्हें सब पहले से पता था? तुमने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा? यहाँ क्या हो रहा है, और नानी माँ इस तरह क्यों रो रही हैं, और वो कौन है, किसे अगवा करके लाए हो तुम लोग? एंजल ने उसे शांत करते हुए कहा, प्लीज़ अविनाश शांत हो जाओ, अभी आस्था आप सभी लोगों के सवालों के जवाब देगी, प्लीज़ पहले उन्हें बोलने दो। एंजल की बात सुनकर सभी कुछ देर के लिए शांत हो गए। वहीं आहान एक बार फिर ध्रुव के कान में फुसफुसाया, एक बात समझ में नहीं आती यार, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन गोरे लोगों के मुंह से हिंदी सुनना कितना मज़ेदार होता है, कितना अच्छा लगता है ना? ध्रुव ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, यार तू कभी सीरियस होगा लाइफ में? एक बार सीरियस हुआ था तो तूने सबकी फाड़ दी थी, और अब है कि सीरियस होने का नाम ही नहीं लेता। आहान ने कंधे उचकाते हुए कहा, यार मैंने क्या कर दिया, मुझ पर क्यों भड़क रहा है? फिलहाल सभी लोग एक साथ बैठ गए। अरमान बिना किसी इमोशन के वहीं बैठा हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही इस बात का एहसास करा रही थी कि इस वक्त कितनी बड़ी शक्ति वहां मौजूद है। अरमान ने ठंडी नज़रों से सबको देखना शुरू किया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। इसी बीच सुमित और आकाश की नज़रें न जाने क्यों बार बार उठकर अरमान पर ही टिक जा रही थीं, जैसे वे उसके चेहरे से कोई राज पढ़ लेने की कोशिश कर रहे हों। आकाश ने हल्का सा झुककर सुमित के कान में फुसफुसाया, कुछ तो है जो आज अरमान में अलग लग रहा है, मुझे उसमें पुराने अरमान की झलक नज़र आ रही है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा राज हमारे सामने आने वाला है। सुमित ने भी गंभीर होकर सिर हिलाया। आकाश आगे बोला, फिलहाल सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये लड़की कौन है, उसके बाद ये जो हमें अरमान के बारे में अजीब सा महसूस हो रहा है उसका सीधा सवाल हम उसी से करेंगे। सुमित ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बिना कुछ कहे बस हल्के से हामी भर दी। दोनों ने तय कर लिया कि अभी चुप रहना ही बेहतर है। इसके बाद वे दोनों चुपचाप खड़े होकर सारा तमाशा देखने लगे, लेकिन उनकी नज़रें लगातार अरमान पर टिकी हुई थीं, जैसे वे उसके हर हाव भाव को अपने दिमाग में दर्ज कर रहे हों। वहीं वीर और वसुंधरा एक साथ बैठे हुए थे, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वसुंधरा ने आगे बढ़कर नानी माँ को संभाला, उन्हें पानी पिलाया और धीरे धीरे उनकी पीठ सहलाने लगी। आखिरकार नानी माँ की उम्र काफ़ी हो चुकी थी और उन्हें तकलीफ भी हो रही थी। कुछ देर बाद नानी माँ ने खुद को शांत किया। तभी आस्था ने गहरी सांस लेते हुए सबकी ओर देखा और बोली, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन हम मंदिर नहीं गए थे, हम गए थे डाक विला। जैसे ही आस्था ने डाक विला का नाम लिया, सबके कान खड़े हो गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आस्था वहां गई होगी। आहान तुरंत बोल पड़ा, क्या कह रही हैं भाभी, आप डाक विला गई थीं? आपको पता भी है इसका मतलब क्या होता है? ये कैसे हो सकता है कि आप वहां गई और जिंदा सलामत वापस आ गई? आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, हमें बताया क्यों नहीं? वो जल्दी से उठकर आस्था के कंधे पकड़कर उसे देखने लगा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? तभी रौनक ने आगे आकर कहा, हमें कोई चोट नहीं आई, हम बिल्कुल ठीक हैं, और हाँ, हम सभी लड़कियां एक साथ डाक विला गई थीं। वहीं रश्मि ने जैसे ही रौनक को देखा, वो तुरंत तेज आवाज में बोली, क्या कहा तुमने, तुम भी वहां गई थी? आखिर तुम वहां कैसे जा सकती हो, और तुम सब लड़कियां एक साथ वहां चली गईं? किसी ने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा, आखिर चल क्या रहा है यहां पर? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और चिंता भी। तुमने एक पल के लिए भी सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? रश्मि ने फिर से तीखे लहजे में कहा। रश्मि की बातें सुनकर सभी लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर चुपचाप अपना सिर झुका लिया। कोई भी उसे और टेंशन नहीं देना चाहता था, वे जानती थीं कि रश्मि का गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि डर और फिक्र का नतीजा है। रश्मि के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा नाराज थी, लेकिन वो ये भी कोशिश कर रही थी कि लड़कियों के सामने अपना आपा पूरी तरह न खो दे। तभी गहरी नजरों से सुमित ने राधिका की ओर देखा, जैसे वो उसके चेहरे से सच्चाई पढ़ लेना चाहता हो। सुमित ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, राधिका, सच सच बताओ, वहां आखिर हुआ क्या था, और तुम लोगों ने हमें बताए बिना इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया? उसकी आवाज में गुस्सा कम और जवाब जानने की बेचैनी ज्यादा थी। माहौल एकदम खामोश हो गया, जैसे हर कोई राधिका के जवाब का इंतजार कर रहा हो। तब सुमित आगे बोला, क्या वाकई तुम भी डाक विला गई थी? तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आ गई? तुम तो मामूली से कॉकरोच को देखकर डर जाती हो और डाक विला चली गई। सभी के मन में अनगिनत सवाल थे। टाइगर भी फिक्र भरी नजरों से मारिया को देखते हुए बोला, मारिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम डाक विला जा रही हो? क्या तुम्हें बताना एक बार भी जरूरी नहीं लगा? और ये लड़की कौन है? तभी आस्था ने थोड़ी सख्ती से कहा, आप लोगों के सारे सवालों के जवाब हम दे रहे हैं ना, लेकिन पहले हमें बोलने का मौका तो दीजिए। बीच में आप लोग ही बोलने लग जाते हैं, बताइए ऐसे में हम पूरी बात कैसे समझाएं? आस्था के इस अंदाज को लेकर सब पूरी तरह शांत हो गए। तभी आस्था ने गंभीर स्वर में कहा, हमने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और हमें पता चला कि डाक विला में एक लड़की को बंधक बनाकर रखा गया था। इतना कहते ही हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। ये वही लड़की है जिसे हम वहां से छुड़ा कर लेकर आए हैं। जैसे ही आस्था ने ये कहा, आहान फिर भी खुद को रोक नहीं पाया और बोला, लेकिन भाभी, अगर आप किसी लड़की को छुड़ा कर लाई हैं तो उसे उसके घर वालों के पास ले जाना चाहिए था। आप उसे यहाँ क्यों लेकर आई हैं और इस तरह से उसे लैब में क्यों ले जाया गया? तभी वंशिका और मारिया, जो उसे लैब में लेकर गई थी, बाहर आ गई। इस वक्त वो लड़की वंशिका के दिए हुए इंजेक्शन के असर से गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही आहान ने वंशिका को देखा, तुरंत सवाल किया, वो कैसी है? वंशिका ने शांत स्वर में कहा, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, वो अभी गहरी नींद में है। जब उठेगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन वंशिका की ये बात सुनकर ध्रुव भड़क गया और बोला, ये क्या बोल रही हो वंशिका? उस अनजान लड़की को कौन सा इंजेक्शन दिया है तुमने? तब वंशिका बोली, वही जिसकी डिटेल्स में गुरुजी से लेकर आई थी, जो इंजेक्शन मैंने लैब में बनाया था।
ये सुनकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं तभी आहान बोला था, लेकिन वंशिका भाभी, आपने ऐसे क्यों किया? वो इंजेक्शन तो वो तो अरमान भाई के लिए बनाया था ना, फिर आपने उस लड़की को क्यों दे दिया? यहाँ चल क्या रहा है? अरमान भाई से ज्यादा वो लड़की इम्पोर्टेंट कैसे हो गई? जवाब तो वंशिका भाभी। वहीं ध्रुव भी गुस्से से बोला था, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो वंशिका? अरमान भाई के लिए बनाया गया एंटीडोट तुम उसे लड़की को कैसे दे सकती हो? हमारे लिए सबसे ज्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो अरमान भाई हैं, हमें उन्हें ठीक करना है, और तुम उस लड़की को इंजेक्शन देकर आ गई। ध्रुव की आवाज गुस्से से भर चुकी थी। वंशिका ने उसकी ओर देखकर गंभीरता से कहा, आप शांत हो जाइए ध्रुव, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब तक अविनाश और अबीर सिंह राठौर खुद को रोक नहीं पाए और बोल उठे, आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? और वंशिका जी, आप तो काफी समझदार लगती हैं, फिर आप ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती हैं? इस अनजान लड़की को, जिसे हम लोग ठीक से जानते तक नहीं, आपने वही इंजेक्शन दे दिया जो हम मिस्टर अरमान सिंघानिया को देना चाहते थे, और शायद आप भूल रही हैं, अबीर ने कहीं ना कहीं अरमान की ओर देखते हुए कहा, शायद आप ये भूल रही हैं कि मिस्टर सिंघानिया की हालत दिन ब दिन बदलती जा रही है, उन्हें सही गलत तक की पहचान नहीं रह गई है, और ऐसे में उनका इंजेक्शन देने की बजाय आप किसी और लड़की को दे रही हैं, व्हाट इज दैट? जैसे ही कबीर ने अरमान की बीमारी और साथ ही उसके पागलपन तक की बातें वहां छेड़ी, अरमान ने केवल एक बार पलके उठाकर उसे देखा। उस एक नज़र में ऐसा कुछ था कि अबीर को लगा मानो उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई हो। वो घबराकर जल्दी से इधर उधर देखने लगा। लेकिन तब तक रश्मि भी हैरानी से बोल उठी, मुझे लगता है कि जरूर कुछ न कुछ चल रहा है, आखिरकार घर में हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि भले ही सब एक साथ रह रहे हों, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। वंशिका, अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ। रश्मि की बातें सुनकर वंशिका सबको जवाब देना चाहती थी। उसने बेबसी से आस्था की ओर देखा। आस्था की आंखों में उसे शांत रहने का इशारा मिला। लेकिन तभी सुमित आगे आए और बोले, वंशिका, ध्रुव जो सवाल कर रहा है उसका सही तरीके से जवाब दो, आखिरकार वो इंजेक्शन आपने उस लड़की को क्यों दिया? बताओ क्यों? दादाजी भी खुद को रोक नहीं पाए। वहीं नानी माँ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी अनजानी आशंका ने भीतर तक हिला दिया हो। वसुंधरा उनके पास बैठकर उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। वहीं अचानक वीर भी खुद को रोक नहीं पाया और वंशिका की ओर देखकर बोला, देखिए, माफ कीजिएगा वंशिका भाभी जी, मुझे नहीं पता कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हैं कि अरमान भैया को इस इंजेक्शन की कितनी ज्यादा जरूरत थी। अगर आपने वही इंजेक्शन इस तरह किसी अनजान लड़की को दे दिया तो ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। अरमान भैया का ठीक होना हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस सबके बीच अरमान अब भी अपने चेहरे पर खामोशी सजाए बैठा था। उसकी मौजूदगी ऐसी लग रही थी मानो वहां कोई राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हो और सामने प्रजा आपस में किसी गंभीर मुद्दे पर बहस कर रही हो। दादाजी फिर बोले, वंशिका बिटिया, हमें नहीं पता तुमने सही किया या गलत, लेकिन अरमान का ठीक होना भी तो जरूरी है ना बेटा। इतनी सारी अलग अलग बातें सुनकर वंशिका की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल जैसे भीतर से टूट गया। उसने एक बार फिर आस्था की ओर देखा। ध्रुव एक बार फिर गुस्से में बोला, वंशिका, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, वो इंजेक्शन अरमान भैया के लिए था, तुमने ठीक नहीं किया। ध्रुव की आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। तभी आस्था आगे बढ़ी और बोली, देखिए, जितने हमारे लिए अरमान जी जरूरी हैं, उतनी ही हमारे लिए वो लड़की भी जरूरी है। आस्था इतना बोलते ही रुक गई, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा सच आधा खोल दिया हो। अब तो सबने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखना शुरू कर दिया। अबीर उलझन में बोले, बटरफ्लाई हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम गोल गोल बातें क्यों घुमा रही हो। सीधी तरह से क्यों नहीं बताती कि आखिर तुम्हारा उस लड़की से क्या लेना देना है, कौन है वो। आस्था ने गहरी सांस ली और कहा, वो लड़की हमारी बहन है, प्रियंका दीदी। ये सुनते ही सबके चेहरे हैरानी से भर गए। प्रियंका? प्रियंका कैसे हो सकती है, वो तो अपने पति के साथ विदेश में रह रही है ना। मनोज जी ने तो बताया था कि वो लोग विदेश में सेटल हो गए थे, तो फिर प्रियंका यहाँ कैसे आ सकती है। लेकिन प्रियंका वहाँ क्या कर रही थी, सबने तुरंत सवाल किया। अभी भी सभी हैरानी से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। वहीं रश्मि ने घबराहट में सभी लड़कियों की ओर देखा। उसे अब समझ में आ चुका था कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है जिसके बारे में उसे पूरी खबर नहीं थी। तभी आस्था ने सारी सच्चाई बतानी शुरू की। नाइजीरिया में जब वैभव प्रियंका दीदी को हनीमून के लिए लेकर गया था, उसी वक्त उन पर राजवीर के आदमियों ने हमला किया। वैभव को मार डाला गया और प्रियंका दीदी को राजवीर ने अपनी मरी हुई पत्नी का चेहरा दे दिया। ये सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। आस्था आगे बोली, और इतना ही नहीं, आपको पता है हमें इन सब के बारे में कैसे पता चला। हमने मारिया दी को डिजिटल तरीके से राजवीर के डाक विला पर नजर रखने के लिए कहा था। लगातार निगरानी करने के बाद एक दिन कुछ पलों के लिए प्रियंका दीदी की आवाज में बदलाव आया। ड्रग्स का असर कुछ समय के लिए खत्म हुआ था। तभी हमें शक हुआ और फिर कन्फर्म हुआ कि वो असल में प्रियंका दीदी ही है। आस्था की बातें सुनकर सभी लोग सकते में थे। अब सबकी नजरें एक साथ अरमान की ओर उठ गईं, जो अब तक चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में उठता तूफान साफ दिखाई दे रहा था। फिलहाल आस्था की बात सुनकर हॉल में जैसे बर्फ जम गई हो, हर किसी की सांसें थमी हुई थी। प्रियंका, वो लड़की प्रियंका थी। जिस प्रियंका को सब विदेश में खुश और सुरक्षित समझ रहे थे, वही राजवीर के डाक विला में नर्क झेल रही थी। लेकिन तभी ध्रुव बोला था, अगर वो प्रियंका थी तो उसके लिए हम और एंटीडोट बना सकते थे, लेकिन अरमान भाई वाला एंटीडोट क्यों दिया उसको। अभी भी ध्रुव की बातों में गुस्सा झलक रहा था, लेकिन तभी अरमान की गहरी और भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, मुझे उस एंटीडोट की जरूरत नहीं है ध्रुव।